आज 7 जून 2020 का शुभ दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। मैं आज आपको श्री महाराज जी के कुछ विशेष गुण में गुण थे, भगवान के गुण तो कौन गुना सकता है, लेकिन फिर भी जो मैंने अपने आँखों से देखा है, सुना हुआ नहीं देखा है, उनका वर्णन करने जा रही हूँ। संकल्प सिद्धि कहते हैं कि अगर मन शुद्ध हो तो संकल्प पूरा हो जाता है। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये तब ये भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं जो ये मन जो है इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। मन हवा से भी अधिक तेज है, हवा को भी आप शायद पकड़ लें, लेकिन मन को नहीं पकड़ सकते। इसलिए मन जो है उसे पकड़ने के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए, उसे स्थिर करने के लिए हमारे संकल्प शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध संकल्प कर लो तो मन भी स्थिर हो जाता है और मनुष्य पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। हमने आपको एक ऐसी यात्रा जो महाराज जी ने संकल्प सिद्धि के द्वारा ही की, उसके विषय में बताती हूँ। यात्रा 3 फरवरी 1974 को आरंभ हुई थी, लेकिन मार्च 1973 से दिसंबर 1973 तक श्री महाराज जी मंदिर की व्यवस्था में लगे रहे। मंदिर में छोटे-छोटे अधूरे रह गए कई कार्यों को पूर्ण करने का समय मिला और सभी कार्य कर लिए। 3 जनवरी से लगभग 6 महीने पूर्व श्री महाराज जी ने पंडित श्री राम जी को चलाया कि गंगा सागर की यात्रा करनी है। पंडित श्री राम जी तथा उनकी धर्म पत्नी को श्री महाराज जी अपने साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर भी ले गए थे। पंडित जी का पूरा खर्चा श्री महाराज जी ने ही वहन किया था। अब इस यात्रा के लिए भी पंडित जी तैयार हुए और बस का प्रबंध होने लगा। प्रत्येक यात्री से पैसे इकट्ठे किए जाने लगे। लगभग 15-20 यात्रियों से पैसे भी आ गए, लेकिन अचानक पता चला कि बिहार प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप है और बहुत लोग सर्दी के कारण मर रहे हैं। इसलिए पंडित जी ने श्री महाराज जी को कहा कि सर्दी में जाना उचित नहीं और पंचांग निकाल कर मुहूर्त देख कर बताया कि यात्रा का मुहूर्त ठीक नहीं है। उन दिनों में तो गवर्नमेंट जेवी के स्कूल में पढ़ाती थी, अभी सर्विस नहीं थी। मेरा कहने का तात्पर्य है श्री महाराज जी तो संकल्प सिद्धे। उन्होंने पंडित जी को साफ साफ शब्दों में बता दिया बाबा मुहूर्त नहीं निकालता, जब भगवान की आज्ञा हो जाती है तभी चल पड़ता है, इसलिए बाबा तो अवश्य जाएगा, जिसे साथ चलना है चल पड़े। परंतु पंडित जी के अशुभ मुहूर्त की बात कहने से गंगा सागर की यात्रा पर जाने से सभी ने इनकार कर दिया, इसलिए पूरी बस का किराए पर करने का तो प्रश्न ही नहीं रहा। उधर रेलवे ने आरक्षण करवाने के लिए भी देर हो गई थी। बाबा जी के साथ चलने के लिए केवल 2 बूढ़ी माताओं ने आग्रह किया, पैसे भी वापस नहीं लिए। इनमें से एक मेरे माता जी और दूसरी थी विद्यासागर सेवा की माता जी। की माँ भी ने भी कहा मैं जरूर जाएगी और मैं भी चलने के लिए तैयार हो गई थी। इसलिए श्री महाराज जी ने जगदीश को पता भेजा। जगदीश उन दिनों खादी कमीशन के मंदिर कार्यालय में कार्यरत थे। जगदीश जी जब पता चला कि वे मंदिर पहुंच गए, सलाम मशवरा हुआ। जगदीश ने कहा कि वह शिमला या कालका में रेल आरक्षण के लिए प्रयत्न करेगा तथा श्री महाराज एवं मैं दोनों माताओं को लेकर 3 जनवरी को चंडीगढ़ आ जाएं। वे भी चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। जगदीश शिमला जाकर तैयारी करने लगा। 3 जनवरी को श्री महाराज दोनों माताएं तथा मैं चंडीगढ़ पहुंची। उन दिनों बस अपनी कोई गाड़ी नहीं होती थी, इसलिए प्रातः 4 बजे मुझे दोनों माताओं को तथा स्वामी जी को लांगन भाई जी ने कुल्लू चंडीगढ़ बस में बैठा दिया। यहाँ तक कि हमारे जाने से पहले, मेरे और मेरे माता जी के जाने से पहले, मेरे बड़े भाई जी का फोन आया चंडीगढ़ से कि उनको रोक लो, मत भेजो। तो माता जी तो मान ही नहीं रही थी, तो मुझे भी माता जी के साथ जाना ही था। तो बड़े मुश्किल से हम दोनों तैयार हो गए और मैं उन माताओं को लेकर, स्वामी जी को लेकर बस द्वारा चंडीगढ़ सायंकाल पहुंच गई। वहां पर कहां जाऊं कुछ समझ न आए, 2 रिक्शे कर लिए गए, सामान भी बहुत ज्यादा था। उन दिनों लोग ट्रंक लेकर ही चलते थे, माता जी ने भी और माता जी ने भी एक एक ट्रंक अपने साथ रख लिया था कपड़ों का, और हमने 2 बिस्तरे भी बना लिए थे। अब क्या करूं, अकेली मैं, तीनों स्वामी जी और 2 माताएं तो वृद्ध थी, इसलिए 2 रिक्शे करके सारा सामान डाल करके मैंने रिक्शा वाला को कहा कि चलो सूद धर्मशाला में हमें ले चलो। वो रिक्शा वाले ने हमें बैठा लिया, फिर कहा माता जी सूद धर्मशाला में तो कोई जगह नहीं मिलेगी बहन जी, कहीं और धर्मशाला में आपको ले चलता हूँ। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि ये हमें गुमराह ना कर दे। मैंने कहा सूद धर्मशाला हमारी अपनी सूद धर्मशाला है, हम भी सूद हैं और हमारा वहाँ ये कमरा बना हुआ है, इसलिए हमने पहले वहाँ रिजर्वेशन करवाई है, तो हमें भी ले चल। और रिक्शा वाला हमें लेकर के सूद धर्मशाला में पहुँच गया। रात्रि हमने सूद धर्मशाला में ही निवास किया, और उसी दिन रात को 9 बजे जगदीश भाई जी भी आ गए। बड़ी उम्मीद थी कि रेल आरक्षण हो गया होगा, पर जगदीश जी ने बताया कि लाख कोशिश करने पर भी आरक्षण नहीं हो सका। उन दिनों कुसुम बहन जी के पिताजी लाला दीवान चंद शिमला में बड़े मशहूर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कुसुम ने कहा था कि मेरे पिताजी आरक्षण करवा देंगे, पर नहीं हुआ। और जगदीश जी को ख्याल था कि श्री भैयालाल सूद जी भी वहाँ जाने माने व्यक्ति हैं, शायद उनसे काम हो जाएगा, पर आरक्षण नहीं हुआ और जगदीश भाई जी ऐसे ही वापस आ गए। आके उन्होंने बताया कि कोशिश करने पर भी आरक्षण नहीं हो सका। हम बड़े उत्तेजित हुए, मुझे तो बहुत ही चिंता हो गई, पर श्री महाराज जी ने बड़ी शांति पूर्वक कहा चलो कल कालका जाकर देखते हैं क्या बनता है। मैंने सोचा हम कालका से कलकत्ता जाना है, आरक्षण नहीं है, टिकट नहीं है, और कल रात को कालका से ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस कलकत्ता जाएगी, तो कैसे होगा ये सब काम। फिर भी स्वामी जी के वाक्य पर हम सबको पूर्ण विश्वास है, और उस वक्त भी था। 4 जनवरी को प्रातः चंडीगढ़ से कालका के लिए बस पकड़ी और कालका पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर चले गए। प्रतीक्षा कक्ष वेटिंग रूम में बैठे प्रतीक्षा होने लगी। श्री महाराज बड़े अस्त व्यस्त से लगे थे। आखिर उन्होंने कहा मुझे कि आप जगदीश को लेकर कलकत्ता के टिकट ले आए। मैं हैरान थी कि हमें कौन जानता है जो हमें कलकत्ता के टिकट में मिल जाएंगे। 2:30 बजे दिन का समय था। जगदीश और मैं दोनों रेल कार्यालय में गए, परंतु वहाँ कौन पूछे। आखिर दोपहर के पश्चात एक नौजवान को ट्रेन में मिली और उसने 5 टिकट दे दिए, वो भी जब जगदीश ने कहा कि हमारे महाराज जी बहुत वृद्ध हैं और संकल्प सिद्ध हैं, उन्होंने संकल्प किया है कि वो 13 जनवरी को गंगा सागर में स्नान करेंगे, और इसलिए हमें अवश्य ही इस ट्रेन द्वारा आज जाना होगा। जगदीश ने जब सारी बात बताई तो उस नौजवान ने मेरी ओर देखते हुए कहा, वो की कोई बात नहीं, देखते हैं कि आपका कैसे बनता है। तो श्री महाराज जी ने मुझे कहा था कि जो टिकट देगा उसकी जेब में अपने माता जी मम्मी जी 20 रुपए डाल देना। और मैं एक 20 रुपए का नोट हाथ में पकड़े हुए थी और सोच रही थी कब इसकी जेब में डालू। तो इतने में उन्होंने जब टिकट दे दिए और बताया कि उन्हें गाड़ी के पहले डिब्बे में ही स्थान दिया है और 5 स्लीपर भी मिल जाएंगे तथा ये भी कि गाड़ी रात को 9 बजे छूटेगी। रात होते सभी रेल में जा बैठे। उस डिब्बे में सभी बंगाली सज्जन ही बैठे थे, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। रात दिन चलते 3रे दिन प्रातः गाड़ी हावड़ा स्टेशन पर जा लगी। हावड़ा स्टेशन की विशालता देखकर हम सभी दंग रह गए। बहुत दूर धूप करने के पश्चात जगदीश ने टैक्सी की और खाद्य कमीशन के कार्यालय में जाने का प्रयत्न करने लगे। इतने में मैंने क्या देखा, जब हमारी ट्रेन रुकी थी तो उसमें से सभी यात्री निकल कर अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। सभी लोगों को ले जाने के लिए उनके रिश्तेदार या टैक्सी वाले वहाँ खड़े थे और सब चले गए, लेकिन हमें लेने कोई नहीं पहुँचा था। हम ऐसे ही बैठे थे और जगदीश भी इधर उधर कह रहा था कि क्या करूँ, कैसे ले जाऊँ सबको, एक ही टैक्सी में तो जाएगा नहीं, सामान भी है, 5 आदमी भी है। हम वो भी सोच ही रहा था तो मैंने क्या देखा कि जब ट्रेन की थी तो उसमें से बहुत से कुछ बॉक्स जैसे थे जिनमें शायद पनीर था, छेना था, और गरीब बच्चे कोई 20-25 बच्चे जिनके सिर में तेल नहीं था, वो अधमंगे जैसे थे और उनकी उम्र कोई 5-7 से अधिक नहीं थी। और वह बच्चे दौड़ दौड़ कर आए और बाहर से वो निकाल निकाल के खाने लगे। तो फिर वहाँ तो चौकीदार आया, उसने लाठी उठाई, उनको भगाया। हम बैठे मूंगफली खा रहे थे कि जब तक हमारा प्रबंध नहीं होता तब तक चलो मूंगफली खाएं। तो जब हमारे से कोई मूंगफली गिर जाती तो बच्चे आते और उठा के ले जाते। मुझे बहुत ही तरस आया, बहुत ही बेआई, जो कुछ मूंगफली थी मेरे पास हमने उन बच्चों को दे दी। अब इतने में जगदीश भाई जी ने कहा कि मैंने खाद्य कमीशन के कार्यालय में फोन किया है और वहाँ से टैक्सी आएगी, उन्होंने टैक्सी का प्रबंध कर दिया है। और फिर टैक्सी आई और हम सब उस टैक्सी में बैठकर, टैक्सी भी 2 करनी पड़ी क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था, हम गेस्ट हाउस में पहुंच गए। ये गेस्ट हाउस वकीलगंज में था। ये स्थान खुला और शांत था इसलिए हमें बड़ी शांति मिली। यहाँ जगदीश को श्री ब्राह्मणी मिले जिन्होंने श्री महाराज जी का स्वागत किया और अपने घर भी बुलाया। ये गांगुली भले और सज्जन व्यक्ति थे, वे सादा वस्त्र पहने हुए प्राय दिन में एक बार श्री महाराज जी के दर्शन करने पैदल ही आ जाते थे। श्री गांगुली उसमें खाद्य कमीशन के निदेशक डायरेक्टर थे, ये कुल्लू में भी खाद्य कमीशन में रह चुके थे। हमारा कुछ समय कलकत्ता में बहुत ही सुहावना और भक्ति में व्यतीत हुआ। 7 जनवरी को श्री महाराज जी ने कलकत्ता स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन की यात्रा की आज्ञा दी। प्रातः स्नान आदि करके जो ही घर से बाहर आए एक ग्वाला गौ लेकर आता दिखाई दिया। श्री महाराज जी ने मुझे कहा एक पाव दूध शिव पूजा के लिए ले लो। वाले ने उसी समय दूध धोकर दे दिया। रात्रि के समय भी महाराज जी ने कहा कि कल दक्षिणेश्वर जाना है तो वहाँ पर 12 शिवलिंग है, उनका अभिषेक करना है, इसलिए कच्चे दूध की आवश्यकता होगी। और उनका ये बात जो उन्होंने रात को कही थी वो प्रातः अपने आप हमारे सामने उसका प्रत्यक्ष परिणाम मिल गया। टैक्सी द्वारा हम सब दक्षिणेश्वर पहुँचे। मंदिर में राधे कृष्ण और काली मंदिर के दर्शन के पश्चात 12 शिव मंदिरों की पूजा की और दूध और गंगा जल मिलाकर शिव जी का अभिषेक किया। कि गंगा मैया के दर्शन करते हुए भगवान श्री राम कृष्ण के कमरे में और वहाँ शारदा के निवास का दर्शन किया। वहाँ जब हमने वहाँ दर्शन किए तो महाराज श्री राम कृष्ण परमहंस जी के कमरे में दो क्षण भी नहीं ठहरे, एक दरवाजे से उन्होंने प्रवेश किया और दूसरे द्वार से निकल गए। इससे पहले उन्होंने मुझे माँ शारदा का कक्ष दिखाया था और कहा था, देखो माँ आप अपने को पहचानो। तो मैं हंस पड़ी। और फिर जब हम श्री राम कृष्ण देव जी के कमरे में पहुंचे थे तो स्वामी जी ने वहाँ एक क्षण भी व्यतीत नहीं किया, चले गए। तो फिर लेकिन मैंने माता जी ने और माता जी ने जगदीश भाई जी ने श्री राम कृष्ण परमहंस जी का कक्ष बड़े अच्छे तरीके से ढंग से उनका देखा, दर्शन किए और वहाँ प्रणाम किया और बाहर आगे हमने देखा स्वामी जी बाहर प्रांगण में है नहीं। जगदीश ने कहा जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, स्वामी जी निकल गए हैं। हम भी दौड़ दौड़ कर आगे गए तो स्वामी जी जा रहे थे। मैंने कहा स्वामी जी आपने दो क्षण भी यहाँ श्याम कृष्ण परमहंस देव जी के कमरे में व्यतीत नहीं किए और आप उन्हें ऐसे छोड़ के निकल आए, तो अगर आप बैठते तो हम भी थोड़ी देर ध्यान में बैठते। वहाँ कुछ लोग ध्यान में बैठे हुए थे। तो श्री महाराज जी ने कहा मम्मी जी देखो अगर बाबा वहाँ बैठ जाता तो फिर कुल्लू ने जाना आपको मुश्किल होता, फिर बाबा कुल्लू नहीं पहुँच पाता, यही रह जाता। वहाँ भी मैं बहुत ही हैरान भी हुई और मुझे स्वामी जी के अलौकिक बातों में एक दिव्य आनंद की अनुभूति भी होती थी। फिर हम वहाँ से बैलूर मठ पहुँचे, बैलूर मठ के दर्शन करके जहाज कोठी देखी। अच्छा, बैलूर मठ के दर्शन करके जहाज कोठी देख करके हम सायकाल अपने निवास स्थान में आ पहुँचे। 8 जनवरी को हमें फिर जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा की तैयारी की हमने और प्रातःकाल 7 बजे हम पूरी धाम पहुँचे। ये यात्रा रात की थी। हमने दो दो बस्तर अपने ले लिए थे और भगवान के दर्शन करने के लिए चल पड़े थे। वहाँ हमने किसी गेस्ट हाउस में थोड़ा सा उसमें व्यतीत किया, स्नान आदि किए, फिर भगवान के दर्शनों के लिए जगन्नाथपुरी धाम में पहुँचे। पूरी मंदिर के सभी द्वारों को पार कर जब मुख्य दर्शन द्वार पर पहुंचे तो एक पंडे ने कहा दर्शन नहीं होंगे, द्वार बंद है, सायकाल आ जाना। तो श्री महाराज जी ने कहा कि द्वार में जो एक गोल छिद्र है हम उसी से दर्शन करेंगे, आओ आओ माता जी, आओ माता जी। और मैं भी दोनों माताओं को लेकर महाराज जी के साथ आगे बढ़ी। जब उस छिद्र से भीतर देखने लगे तो देखा कि भीतर कुछ लोग मूर्ति विग्रह के आगे खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। इस पर श्री महाराज जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया और गर्ज कर बोले हमें भी भीतर ले चलो, इन लोगों को आप क्यों भीतर ले गए हो, हमें दर्शन का समय नहीं है तो फिर आप ये गड़बड़ क्यों करते हो। श्री महाराज की ये बात सुनकर पंडित लोग सन्नाटे में आ गए और आपस में बातचीत करके शीघ्र ही हमें एक दूसरे रास्ते से भीतर ले गए और हमने भी आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और अपने आप को जगन्नाथ जी के सम्मुख पाकर हम बहुत ही धन्य धन्य हुए। श्री कृष्ण जी बहन सुभद्रा और भाई बलराम से शोभायमान है और श्री महाराज जी समाधि मगन है। संसारिक प्राणी ये सोच भी नहीं सकते कि ये वही बाबा है जो 5 मिनट पहले अपनी ओज भरी वाणी से पंडितों को लताड़ रहा था और अब क्षण भर में अपने प्राण बल्लभ में तन्मय हो गए हैं। क्या अपूर्व दृश्य है। भाव्य होकर श्री महाराज जी ने प्रणाम किया और मुझे कहा कि चलो संकेत द्वारा कि बाहर चलो। हम सब शीघ्र ही बाहर आ गए। बाहर आकर पुनः स्वाभाविक अवस्था में आकर श्री महाराज जी पुनः हम सबको मंदिर दिखाने लगे। चारों ओर मंदिर के भव्य दृश्य दिखाते हुए श्री महाराज जी ने एक पाषाण मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, मम्मी जी ये है एकादशी, देखो भगवान ने यहाँ एकादशी को बांध रखा है। हम सब ने बड़े ध्यान से देखा कि एक नारी मूर्ति को रस्य से बांध दिया गया है। एकादशी को बांधने की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। हम विशेषतः उत्तरी भारत में होने वाले लोग यही जानते हैं कि एकादशी तिथि को भात चावल खाने का निषेध है। भले ही उपवास न हो सके तो भी गेहूँ आटा ही पकाकर खाना उत्तम माना जाता है, लेकिन यहाँ बंगाल और उड़ीसा में चावल खाने के प्रति ऐसा निषेधात्मक विधान नहीं है और जगन्नाथपुरी में तो श्री जगन्नाथ जी को चावल का ही भोग लगता है। इसके लिए 365 धान की छोटी छोटी क्यारियां बनाई हुई हैं। प्रतिदिन के भात के लिए एक क्यारी का चावल लेकर श्री महाराज श्री भगवान जी को भोग लगाया जाता है। एकादशी को चावल के हार में बाधा मानकर ये बताया जाता है कि भगवान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यदि रुकावट होती है तो उसे बांध कर रखो। जब मानव को पराभक्ति अथवा अनुरागात्मक भक्ति प्राप्त होती है तो विधि निषेध तिथि बार आदि रुकावटों को एक तरफ छोड़ दिया जाता है या ये रुकावटें अपने आप छूट जाती हैं। भक्ति का विचार नहीं करता, केवल भगवान पर विश्वास कर उसमें भक्ति रखता है। अतः हमें अनुरागात्मक भक्ति ही प्राप्त करनी चाहिए। और इसके बारे में एक कथा ये भी है कि जैसे कि उत्तरी भारत में गेहूँ अधिक मिलता है और दक्षिण भारत में चावल, इसलिए जहाँ भौगोलिक दृष्टि से जो अनाधिक मिलेगा लोग वही खाएंगे और खाना भी चाहिए। तो इस तरह से एकादशी के विषय में विचार करते हुए मैं श्री महाराज जी के साथ अपने माता जी और माता जी को लेकर आगे बढ़ी। एक और विशाल पेड़ है, पेड़ के निकट जाकर प्रणाम करके श्री महाराज जी ने मुझे कहा, मम्मी जी ये कर्म तरु है, आप इसकी छाया में जो इच्छा करोगी पूरी हो जाएगी। श्री महाराज जी के वचन सुनकर मैं एकाएक कल्प तरु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया करके मैंने मन ही मन कहा, हे कल्प तरु मुझे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो और मैं संसारिकता से मुक्त हो जाऊं। ये मेरा सहज स्वभाव का था और सहज स्वभाव में ही मैंने ये सब शब्द कल्प तरु के आगे निवेदित किए थे। इस प्रकार सारा मंदिर दिखाते हुए एवं अलौकिक आनंद प्रदान करते हुए श्री महाराज हमको मंदिर से बाहर ले आए। अब श्री महाराज जी की इच्छा सारा दर्शन की हुई। एक सवारी मंगाकर उस पर सवार होकर हम सब समुद्र के तट पर पहुंच गए। समुद्र दर्शन करके हम सब धन्य हुए। माताओं को स्नान करने की इच्छा हुई, उन्होंने स्नान किया। विदेश भाई जी ने भी स्नान करने के लिए समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के भीतर जाने का प्रयत्न किया। मैंने स्नान न करके श्री महाराज जी के पद चिन्हों का अनुसरण किया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि श्री महाराज जी दोनों हाथ जोड़कर एकदम सीधे खड़े हो गए हैं और समुद्र की स्तुति करते हुए भाव समाधि में चले गए हैं। मैं उन्हें टकटकी बांधे देखती रही। भक्त और भगवान के मध्य कोई नहीं था, ऐसे सुंदर समय का पूरा लाभ उठाया समुद्र ने और किलकारियां मारता हुआ भगवान के श्री चरण कमलों को। अतः श्री महाराज जी के चरण कमलों को छूकर समुद्र भी धन्य हुआ। जब श्री महाराज जी भाव मग्न थे तो मैंने देखा कि एक बड़ी लहर ज्वार भाटे से निकलकर श्री महाराज जी के चरणों को धोकर पूर्ण सागर में जा मिली। इस प्रकार सागर ने लहर के रूप में अपना अस्तित्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके अपने को धन्य माना। ये दृश्य देखकर मैं भाव विवल हो गई और आंखों के सामने दृश्य आ गया रामायण का। भगवान श्री राम समुन्द्र के किनारे खड़े हैं, समुन्द्र शरीर धारण कर उनके सामने खड़ा स्तुति कर रहा है। मैं कुछ क्षणों के लिए सारी माया भूल गई और रह गया केवल शुद्ध सच्चिदानंद भगवान। कुछ देर बाद श्री महाराज सहज अवस्था में आए और कहा, माँ चलो। इतने में माताएं और जगदीश भी स्नान करके लौट आए। अब श्री महाराज जी ने कहा, मम्मी जी भूख लगी है, भूख लगी है, चलो भोजन करें। हम सब शहर की ओर चल पड़े। वहाँ एक ऐसा ढाबा तलाश किया जिसमें दाल चावल एवं शाकाहारी भोजन ही बना था, क्योंकि यहाँ मछली तो सामान्य रूप से पकती ही है। पतलों में मोटे चावल का भात और एकदम पतली दाल परोसी गई। दाल इतनी पतली थी जो पतलों से बाहर निकल रही थी। हमने जगन्नाथ का प्रसाद मानकर उसे ग्रहण किया और कलकत्ता लौटने की तैयारी की। यात्री रेल द्वारा पुरी से कलकत्ता लौटे। 10 तारीख को कलकत्ता रहे और 11 तारीख को गंगा सागर की यात्रा शुरू की। 11 तारीख को रात्रि रेल से चलकर 12 तारीख प्रातः हम डायमंड हार्बर पहुँचे। श्री गांगुली खादी कमीशन के निदेशक कालीगंज वाले खादी कमीशन के गेस्ट हाउस में रहा। प्रतिदिन श्री महाराज के दर्शन करने आते थे। अब उन्हें हमारी गंगा सागर की यात्रा के कार्यक्रम का पता चला तो उन्होंने अपने दफ्तर से 2 बंगाली युवक नियुक्त किए जो हमें गंगा सागर की यात्रा में सहायता करते। भोजन के लिए गेहूँ का आटा खींच कर परांठे बनाने के लिए कहा और उन दोनों युवकों ने हम काफी परांठे भी बनाए, क्योंकि हमारे में शाकाहारी भोजन न मिलेगा तो बड़ी कठिनाई होगी। इन दोनों बंगाली युवकों ने हमारा सामान संभाला और हमें लेकर डायमंड हार्बर पहुंच गए। कलकत्ता से डायमंड हार्बर पहुंचने के बाद वहां देखा क्या विशाल प्रतीक्षालय था वहां पर, और सारे भारतवर्ष की गाड़ियां वहां पर आके रुकी हुई थी। और 7 बजे स्टेशन पर हमारी गाड़ी भी रुकी तो मैं ये सब देखकर बहुत ही चकित रह गई थी। और उस प्रतीक्षालय को देखकर तो मैं दंग रह गई जो कि जनता से यात्रियों से भरपूर था। दिल धरने की जगह पहाने थी। यात्री प्रतीक्षालय के बाहर इधर उधर जा रहे थे जैसे समस्त भारत इकट्ठा हो रहा था। इस प्रतीक्षालय का पिछला द्वार बस अड्डे की ओर था। इस द्वार से यात्री बस पकड़ रहे थे। धीरे धीरे प्रतीक्षालय खाली हो गया। हमने भी यहाँ 2 घंटे विश्राम किया, क्योंकि वो बंगाली युवक जो हमारे साथ आए थे उन्होंने कहा, महाराज जी हमारा घर यहाँ साथ ही है, हम अपने बाल बच्चों से मिलकर आते हैं, तो इसलिए वो 7 बजे अपने गांव चले गए थे। और श्री महाराज जी ने वहाँ पर बुहारी शाले से बाहर खाली धरती में, उन दिनों महाराज जी ने बस्ते तो पहनते नहीं थे, पांव भी नंगे थे, एक मात्र लोई ओढ़े होते थे, उसी लोई को ओढ़ करके वहाँ धरती पर लेट गए और समाधिस्थ हो गए। और मैं इधर उधर घूमने लगी। माताएं भी थक गई थी, उन्हें एक तरफ बैठा दिया गया कि जब तक वो 2 युग नहीं आएंगे हम आगे यात्रा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वो युग जब तक नहीं आएंगे तो हम कैसे जाएंगे। ये सोचकर मैंने जगदीश भाई जी को कहा कि चलो अब घूमने चलते हैं, माताएं तो थक गई हैं, ये बैठी हैं। हम दोनों घूमते घूमते निकले तो हमने सामने समुन्द्र को देखा, खाड़ी बंगाल को देखा, और उस समुन्द्र को खाड़ी बंगाल के दृश्य को देख कर मैं पुनः बहुत ही भाव विभोर हो गई। प्रतीक्षा करते काफी समय बीत गया था, प्रतीक्षालय खाली हो गया था। पता 7 बजे हम पहुंचे थे और अब 9 बजने को जा रहे थे। धीरे धीरे सभी यात्री दूसरे द्वार से होकर बस पकड़ करके गंगा सागर की ओर जा रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि कब वो योग आते, तो कब हम भी अपना सामान उठा करके उस प्रतीक्षालय के भीतर से होकर उस पार चले जाते। जब प्रतीक्षालय खाली हो गया तो जगदीश ने कहा कि हम प्रतीक्षालय के भीतर बैठते हैं, चलो। हम भीतर चले गए तो महाराज जी एक और बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि सामने एक दृश्य उन्हें दिखाई दिया जो उन्होंने हमें भी दिखाया। उन्होंने कहा देखो माँ वो सामने क्या है, देखो एक परिवार बैठा है। हमने देखा कि एक परिवार पति पत्नी और उनका एक बच्चा, पति अधेड़ उम्र का था जो हुक्का गुड़गुड़ाया था, उसने टोपी पहनी थी, बास्केट पहनी था और ठंडा ऊपर से कोट पहना था, पैजामा तंग मोरी का था जिसकी दाई टांग में ऊपर का कपड़ा फटा हुआ था, उस टांग में एक घाव भी था जिस पर मुखिया भिन बिना रही थी। पत्नी की उम्र लगभग 35 वर्ष की थी, उसने मैली चिथड़ी एक साड़ी पहन रखी थी और पत्थर पर चटनी पीस रही थी। 7-8 वर्ष का लड़का इधर उधर खेल रहा था, बालक मोटा और चिकना था। महाराज जी तो भाव समाधि में थे। अब मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उस बहन से कहा बहन आप यहाँ क्यों बैठी है, आप लोग क्यों नहीं गए, सब लोग चले गए तो आप क्यों नहीं गए गंगा सागर। तो कहते बहन हम तो नौका के द्वारा जाते हैं, यहाँ तो बस के द्वारा जाके आगे जहाज पकड़ना पड़ता है, लेकिन हम तो सीधे ही नौका से गंगा सागर पहुँच जाएंगे। तो ये बातें करते हुए मैंने देखा कि स्वामी जी की समाधि खुल गई और सामने परिवार को देखकर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा मम्मी जी एक साड़ी और फल लाओ। जब भी कहीं जाते तो श्री महाराज जी वस्त्र या भोजन उन लोगों को जो जरूरतमंद होते अवश्य देते थे। तो उसमें हम साड़ी कहाँ से लाए, हमें पता भी नहीं था यहाँ बाजार है, तो कहते अपनी साड़ी लाओ। मैंने कहा स्वामी जी 2 दिन के लिए लाए हैं और मैं केवल 2 ही साड़ियाँ साथ लाई हूँ, एक मैंने पहनी है और एक मैं साथ लाई हूँ, क्योंकि अब जाके गंगा सागर में स्नान करूंगी तो साड़ी बदलूंगी, तो बाकी साड़ियाँ तो कलकत्ते छोड़ आई हूँ, तो इसलिए मैंने कहा साड़ी तो है नहीं। पर श्री महाराज जी बोले जाओ उस मार्केट है वहाँ से खरीद कर लाओ। मैंने लाल जगदीश जी को लेकर मैं बाहर गई, थोड़ी दूरी पर हमने एक छोटी मार्केट देखी, छोटी छोटी दुकानें जिसमें थी और वहाँ अनेकों बूथ पर अनेकों खरीदार भी थे और वो साड़ियाँ भी थी। तो मैंने वहाँ जाकर के लाल किनारे वाली हरे रंग की साड़ी और ब्लाउज खरीद लिया और आकर कहा कि महाराज जी हम साड़ी ले हैं ले आए हैं। तो महाराज जी ने कहा अच्छा जाओ माँ अब कुछ फल फूल भी ले आओ और कुछ पैसे रख करके माता जी को दे दो। मैंने वो साड़ी और फल फूल उस माता जी को, उस बहन को, उस गहरी शक्ति को दे दी। मैंने कहा स्वामी जी बुरे आदमी को इस बच्चे को, तो स्वामी जी चुप रहे। धीरे धीरे से मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा तो बाबा का भिक्षा लेने आ गया है। मैं चुप रही और फिर महाराज जी ने कहा कि माँ को बोलो को साड़ी वो अभी पहन दे। और उस महिला ने, उस बहन ने वो साड़ी इतने अच्छे ढंग से पहन ली उस इसमें और ऐसा लगता था कि साक्षात भगवती पार्वती माँ हमारे सामने खड़ी है। उसी से वो 2 युवक भी आ गए और महाराज जी ने कहा चलो 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 जल्दी चलो बस अड्डे की ओर चलो। और महाराज जी बड़े बड़े पग भरते हुए प्रतीक्षालय के दूसरे द्वार की ओर जाने लगे और पीछे से वो महिला चाहती थी कि श्री महाराज जी के चरणों को छुआ जाए। वो दौड़ी भी पर महाराज जी इतनी